ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सहायता से निर्मित जाफना के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखे जाने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह भारत तथा श्रीलंका के बीच लोगों के प्रगाढ़ सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों का परिचायक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों के लोगों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्ष में 2,25,00,000 से अधिक संपत्तियों के रिकॉर्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जमीनों के रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण कर रही है और अब तक 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता करेगी। इस दौरान किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की इस पहल से आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर गतिरोध खत्म हो जाएगा। आंदोलनकारी किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद 55 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए सहमत हो गए हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री अमित शाह हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक नई एकीकृत इंडोर शूटिंग रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। इस यात्रा के दौरान गृहमंत्री तिरुपति में राज्य सरकार की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 7,72,00,000 से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ से समूचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान 2.7% की तुलना में भारत के लिए 6.7% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि अगले 2 वित्त वर्ष में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि दर बने रहने का अनुमान जताया है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। चंडीगढ़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2017 के कोटखई दुष्कर्म और हत्या मामले में एक आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या के मामले में पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी और 8 अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मांग की है कि जब तक हमास पहले चरण में रिहा किए जाने वाले 33 बंधकों के नामों की सूची नहीं देता, तब तक इसराइल युद्ध विराम समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इसराइल युद्ध विराम समझौते के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने 42 अंकों के अंतर से दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज फाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल से होगा। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।